उपस्थित सुधीजनों देवियों, हम सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा कर रहे थे। लाइट ऑफ ट्रूथ इंग्लिश में, और उसका जो थर्ड चैप्टर है वो हमारा चल रहा था। आज उसका पार्ट थ्री है, तीसरा भाग है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी के द्वारा लिखित है। पूरे आर्य समाज का जो विचार है, आर्य समाज क्या मानता है क्या नहीं मानता है, जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ सकते हैं उनको स्पष्ट धारणाएं होंगी। जिसको आजकल हम हिंदू धर्म कहते हैं, जिसका पुराना नाम सनातन या वैदिक धर्म है, उस धर्म का असली क्या स्वरूप है, क्या क्या चीजें उसमें बदलाव आया समय के साथ, किस तरह के क्या सच है क्या झूठ है, और जो हमारे धर्मों में माना जाता है उसका लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, उसकी क्या प्रमाण है, इन चीजों से हम सत्यार्थ प्रकाश की दृष्टि से समझ सकते हैं। इसलिए इसका नाम उन्होंने दिया लाइट ऑफ ट्रूथ, सत्य के प्रकाश। हमने पिछले बार चर्चा की कि ये जो चैप्टर है ये है एडुकेशन, थोड़ा आवाज कम करते हैं ज्यादा, ये शिक्षा के बारे में। पिछले बार हमने चर्चा की कि प्राचीन काल में जब गुरुकुलीय परंपरा थी तो बच्चे जब 7-8 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद वो गुरुकुल जाया करते थे पढ़ने। जैसे आजकल 6 साल की उम्र में या 5+ या 6+ की उम्र में वो फर्स्ट ग्रेड में जाता है, जिसको आप फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। उससे पहले जो आप नर्सरी या किंडरगार्टन एजुकेशन नॉन फॉर्मल होता है वो पहले माँ बाप के जिम्मे हुआ करता था। पिता माता 7 या 8 साल तक पढ़ाते थे, उसके बाद उसका उपनयन संस्कार होता था, जिसको आजकल आप जनेऊ संस्कार कहते हैं और शादी के एक दिन पहले कभी कभी करा देते हैं। वो जनेऊ संस्कार वस्तुतः पढ़ने के लिए एक संस्कार था, 8 साल की उम्र में होने का था। और जो पहला लेसन दिया जाता था वो गायत्री मंत्र का था। और हमने पिछले बार गायत्री मंत्र की चर्चा की कि गायत्री मंत्र इसीलिए सबसे पहला लेसन हुआ करता था क्योंकि उसमें जो ईश्वर से प्रार्थना की गई है वो बुद्धि की प्रार्थना की गई है। बुद्धि मांगने की नहीं है, बुद्धि तो सब में है, ये सिर्फ इंसानों में बुद्धि नहीं है, गाय बकरी भेड़ों में भी बुद्धि है। तभी तो गाय को पता है कि उसको घास खाना है मांस नहीं खाना है, शेर को पता है कि उसको घास नहीं खाना मांस खाना है, हर एक को अपना अपना पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है यही इंटेलेक्ट का बुद्धि का काम होता है। तो वो इंसानों में भी है और दुनिया के हर पशु पक्षी में भी ये इंटेलेक्ट होता है। पर हमने ईश्वर से इसमें प्रार्थना करते हैं हम इसमें कि हमारी बुद्धि को प्रेरित करो, उसको प्रेरित करो कि वो और अच्छा बने, जिससे कि मेरी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता है वो ज्यादा अच्छी हो। ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति में जितने डिस्क्रिमिनेटिव पावर जितना अधिक होगा, अलग करने की क्षमता जितना अधिक होगा, वो उतना अच्छा इंसान बन पाएगा। अलग करने की क्षमता मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है, कहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसको रेस्पेक्ट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, किस परिस्थिति में कैसे एक्ट करना चाहिए काम करना चाहिए, ये सब बुद्धि का काम है। इसीलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी बुद्धि को प्रेरित करो। तो जब बच्चे को व्यक्ति को गायत्री मंत्र वगैरह अर्थ समझाया जाए, आज जो विषय है आफ्टर टीचिंग दिस गायत्री, दे शुड टेल देयर पुपिल्स डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली प्रेयर, डेली ट्विलाइट प्रेयर सच एज बैथिंग स्लीपिंग वाटर एंड ब्रीथ एक्सरसाइज। आजकल आप देखते होंगे, वैसे तो हम लोग बहुत कम करते हैं, पर जो लोग सो कॉल्ड रिलीजियस हैं जिनको हम मानते हैं, आजकल रिलीजियस होने का जो 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 सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण है, वो ये है कि आप सुबह उठ के नहा धो के हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं एक चैप्टर, वो गुरु ग्रंथ का कोई वो गुटका पाठ कर रहे हैं, या गीता का कोई एक अध्याय पाठ कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो माला डाले मिलेंगे। ये माला ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आजकल हमारे में है, जो तो आप क्रिश्चियनिटी में भी देखेंगे वो भी करते रहेंगे। और बहुत सारे लोग थोड़ा और एग्रेसिवली रिलीजियस हो तो कुछ टीका चंदन तिलक लगा के घूमेंगे। और आप और हम तक जो मैसेज जाएगा, मतलब जो हम लोग समझते हैं ये बड़ा रिलीजियस है, अब मैं तो बड़ा नॉन रिलीजियस आदमी हूं, मैं तो ये सब नहीं करता हूं। पर जब जब सचमुच आप शास्त्र पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि इन चीजों का रिलीजियन से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, धर्म से इनका कोई रिश्ता नहीं है। धर्म तो जीवन आपकी जो आर्ट ऑफ लिविंग है, आप किस तरह जिंदगी को जीते हैं, ये धर्म है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे से जीते हैं तो वो धर्म है, अगर नेगेटिव वे से जीते हैं वो अधर्म है। तो जो जो रोज प्रार्थना करने की तरीका हमारे धर्म में थी, जिसको हम सनातन या वैदिक धर्म कहते हैं, जिसका आजकल हमने तो अपना धर्म का नाम भी किराए पर लिया है, हिंदू धर्म। ये किसी भी इंडियन भाषा में लैंग्वेज में ये हिंदू शब्द होता ही नहीं, ये पारसी शब्द है जो सिंधु से हिंदू बना। चलिए तो क्या थी हमारी जो प्राचीन काल की जो व्यवस्था, जो रोज जो जो रिलीजियस प्रेयर, जो इसको हम कहते हैं ट्विलाइट प्रेयर, मतलब संध्या। संध्या का अर्थ होता है संधि में किया जाने वाला काम। संधि का मतलब होता है एक जॉइंट पीरियड, ऐसा समय जहां दो दो चीजें एक साथ मिलते हो। जैसे सुबह और शाम है, सुबह में रात और दिन दोनों मिलते हैं, रात घट रहा होता है और दिन आ रहा होता है, शाम को दिन घट रहा होता है और रात आ रही होती है, जो दोनों का जो जो मिलने का पॉइंट है उसी को हम संध्या कहते हैं, अंग्रेजी में आप टू लाइट कहते हैं। तो कहते प्रार्थना का जो अच्छा समय है वो यही दो समय है। प्रार्थना हम क्यों करें वो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो प्रार्थना कैसे प्राचीन काल में होती थी और क्या होना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वो जो संध्या है उसमें वो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि सब किया जाता था। स्नान का क्या मतलब है इसके बारे में मनुस्मृति का एक कोट करते हैं, अगला लगा। अद्भिर्गात्राणि शोध्यन्ति मनः सत्येन शोध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शोध्यति। नहाते हम शरीर को साफ करने के लिए, ये जो प्यूरिफिकेशन है, सिर्फ कपड़ों के साफ होने से या शरीर के साफ होने से नहाना नहीं होता है। स्नान का अर्थ है मैले को, गंदगी को हटाना। वो गंदगी शरीर का हो, कपड़ों का हो, मन का हो, दिमाग का हो, आत्मा का हो, कहीं का भी हो। तो मनुस्मृति में बड़ा सुंदर श्लोक दिया, अगर हम अपनी गंदगियां हटाना चाहें तो कैसे हटाएं, बोले अद्भिर्गात्राणि, अगला श्लोक, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। शरीर को साफ रखना है या शरीर से रिलेटेड किसी चीज को साफ रखना है। शरीर से रिलेटेड चीजें क्या है, आपके कपड़े हैं, आपके शरीर है वगैरह, आपके बिस्तर हैं, तो आप उसे पानी से साफ करते हैं और आज भी हम पानी से ही साफ करते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। पर अगर आपको अपने मन की सफाई करनी है, जैसे बहुत सारे लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि मेरा मन ठीक रहे, वैसे तो बहुत सारे लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं मेरा मन बड़ा परेशान है मैं क्या करूं, आप कुछ उनको बताएं, यकीन मानिए वो कुछ नहीं करने वाले, वो सिर्फ पूछने के लिए पूछते हैं। पर कुछ लोग जेन्युइन हैं कि वो अपने मन को ठीक करना चाहते हैं, और ये बड़े रेयर होते हैं ये जो जेन्युइन ठीक करने वाले। पूछने वाले अगर आपको 100 लोग पूछते हैं कि मैं बड़ा बेचैन हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा वो हूं, मैं क्या करूं, आप उनको अच्छा बताएं बुरा बताएं, यकीन मानिए उनको कुछ नहीं करना है। उनको बस ये साबित करना है कि मैं बड़ा बड़ा सीरियस हूं। पर बहुत सारे सीरियस लोग होते हैं जिनके मन में बेचैनी है, परेशानियां है,
उनको लगता है कि मेरे से कुछ ज्यादा ही गड़बड़ियां होने लगी है, मैं क्यों आजकल ज्यादा झूठ बोलता हूँ, क्यों ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूँ, गलत काम में क्यों फंस गया हूं। ये सब मन का काम है, माइंड का काम है। अगर कभी लगे कि मैं अपने मन को ठीक करूं तो मनो सबसे आसान तरीका बताते हैं, और छोटा सा तरीका, मना सत्येन शुद्ध्यति। मन को साफ करने का सिर्फ और एक ही उपाय है, वो है कि सच। जितना हम सच बोलेंगे उतना मन अपने आप साफ होगा। और यकीन मानिए, जो सच बोलता है उससे वैसे ही बुराइयां कम होंगी, क्योंकि आप चोरी करके सच बोल नहीं सकते हो कि मैंने चोरी किया है। अगर सच बोलोगे दोबारा चोरी कर ही नहीं सकते हो। आप खून करके सच बोल नहीं सकते, अगर सच बोलोगे तो आप खून कर ही नहीं सकते हो। तो हमारी जो बुराइयां हैं, वो लालच है, हिंसा है, द्वेष है, जो कुछ है, और ये सब मेंटल स्टेट है, ये मन की अवस्था है। जितना अधिक से अधिक हम सच बोले, हमारे अंदर की बुराइयां उतने कम से कम होता जाएगा। अब बुराइयां कम क्यों होता है? क्योंकि मन साफ है। बुराइयां क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि मन गंदा है। तो मन सत्य न शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। अगर आप अपने आप को, अपने आप के मतलब होलिस्टिकली, आप अपने माइंड, इंटेलेक्ट, अब आपके वाइटल एयर, आपके प्राण, आपके शरीर, ये जो आपकी अपनी एक टोटल पर्सनालिटी है, अगर आप उसको शुद्ध करना चाहते हैं तो विद्या और तप। विद्या का अर्थ होता है पढ़ना लिखना, ज्ञान प्राप्त करने की जो भी सोर्स है, आप किताबें पढ़ के करें या सुन के करें या घूम के करें, ज्ञान प्राप्त करने की, नॉलेज एक्वायरिंग के लिए जो भी सोर्स हो सकते हैं वो विद्या है। और तप, तप का अर्थ होता है कष्ट सहने की आदत डालना, दुख सहने का आदत डालना, ये बड़ी जरूरी चीज होती है। और हमारे बच्चे जो आजकल छोटी छोटी चीजों में ज्यादा ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ज्यादा बौखला जाते हैं, उसका मूल कारण है कि क्योंकि हम बड़े, आजकल हमारे पास सब कुछ है तो हम अपने बच्चों को सब कुछ दे सकते हैं, तो बचपन से हम उनके छोटे छोटे दुखों को भी सह नहीं पाते हैं। और ये जो बच्चों को पूरी तरह मखमल में बढ़ाने की जो जो हमारा जो टेंडेंसी है, उसका जो रिजल्ट होता है, बच्चा जब बाहरी दुनिया में जाता है, छोटे मोटे ना सुनता है, डिनाइंग, दूसरों से मना सुनता है, दूसरे से कोई उसको, यहां तक कि अगर प्यार से बात नहीं करता है, अगर आपने कुछ किया आपको किसी ने थैंक यू नहीं बोला तो भी बेचैनी हो जाती है। ये जो दुख ना सहने की आदत है, उसका परिणाम है कि दुनिया में आपको ज्यादातर जो सुइसाइड टेंडेंसी हो, डिप्रेशन हो, इस तरह की जो मानसिक बीमारियां आपको देखने को मिलती है। इसीलिए प्राचीन काल में जो गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, तो उनको सिर्फ ज्ञान नहीं दिया जाता था, जीने की कला भी सिखाई जाती थी। और इसीलिए रोज उनसे काम लिया जाता था, जंगल में जाकर के काम करने से लेकर, जैसे हम बार बार चर्चा करते हैं, उनसे भीख मंगवाने तक, भीख भिक्षा भी इसीलिए मंगवाया जाता था कि उनको वो चोट लगे दिल पर, और वो बचपन से वो उनको आदत पड़े कि दुनिया कैसी है। दुनिया कोई गुलाब फूलों की, फूलों का सेज नहीं है कि जो मां बाप के साथ रहने से जो जो एक 100% सिक्योर लाइफ होता है, ऐसा नहीं है। और बचपन में अगर ये मां बाप हम ट्रेनिंग दें या गुरु ट्रेनिंग दें, तो बच्चा ज्यादा मजबूत होकर बढ़ता है। इसीलिए आप देखेंगे आर्मी हो, पुलिस हो, जिस तरह की ट्रेनिंग आर्मी में होती है, यकीन मानिए जो अध्यात्म में होते हैं उनको उससे ज्यादा कठोर ट्रेनिंग होती है। फिजिकली इतना नहीं होता, पर उसी तरह के स्ट्रेस सहने दिया जाता है, उसी तरह शारीरिक कर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि सुख में दुख में वो बैलेंस्ड बन सके, वो एक संतुलित जीवन जी सके। ये तप का उद्देश्य होता है, दुख सहने की आदत डालना। हम कभी कभी अगर ऐसी 60 से 70 भी हो जाता है तो भी हम बेचैन हो जाते हैं, कितनी गर्मी है। दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों के पास पंखा तक नहीं होता है, बिजली तक नहीं है, और वो सौ सौ साल जी जाते हैं। ये आदत डालना दूसरों के, ये कोई रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं है कि ऐसी कम सहना। ये हमारे जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी है कि दुनिया में हर जगह आपको ऐसी नहीं मिलती है, तो ऐसी में रहें, पर अगर कहीं नहीं मिला उसको, वो उस जिंदगी को जीने मजा लेने के लिए भी आपको कम ऐसी में रहने के आनंद आना चाहिए। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जब भी अध्यात्म क्षेत्र में जाएं आपके लिए रास्ता आसान होगा। आप सैनिक बनना चाहें या आप योगी बनना चाहें, आप एक बड़ा अच्छा ऑफिसर बनना चाहें या आप डॉक्टर बन, आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपका जीवन ज्यादा आसान होगा अगर आप दुखों को सहना जानते हैं। क्योंकि जीवन 100% सुखमय नहीं होता, इसीलिए बचपन से बच्चों को विद्या और जो तप, तप का अर्थ दुख हो या सुख सहने की जो जो एक प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, ये दोनों कराते रहने से कहते प्राणी की जो जो एक ओवरऑल पर्सनालिटी है वो प्यूरिफाइड होता है, वो पवित्र होता है, वो एक बैलेंस्ड इंसान आपको बनता हुआ मिलेगा। आगे कहता है, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानी न शुद्ध्यति। बुद्धि जो इंटेलेक्ट जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव पावर, ये अगर हमारे पास ना हो तो जानवरों में और हमारे में बहुत कम फर्क रह जाएगा। जानवरों में माँ बाप और बच्चों में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, एक एज ग्रुप के बाद बहुत सारे पशुओं में 15-20 दिन के बाद वो माँ बाप और बच्चों का सब खत्म हो जाता है, कुछ चीजों में बना रहता है। इंसान ऐसा है कि जो जिंदगी भर तक याद रखता है, पशुओं में कोई टीचर्स या स्टूडेंट्स का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, पशुओं में कोई पति पत्नी का रिलेशनशिप नहीं होता, पशुओं में कोई भाई बहन रिलेशनशिप नहीं होता है। पशुओं में सिर्फ एक रिलेशन होता है, भोगना, और भोग के लिए खाने के लिए कुछ भी करना पड़े करना। इंसान जब ऐसा ही होने लग जाए, लग गया है कि सिर्फ उसको अपने भोग के लिए कुछ करना, उसके अलावा और भोगना और कुछ नहीं, तो वो जानवर जैसा बन जाता है। जब आप दुनिया में बड़े विचित्र विचित्र किस्म के हरकतें इंसानों के देखते हैं, तो यही होता है कि हम अपने डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट को कम से कम यूज करते हैं। ध्यान रखिए, जो सोसाइटी, जो सोकल जितने फ्री सोसाइटी, वहां डिस्क्रिमिनेटिव जो इंटेलेक्ट उतना कम यूज होता है। और ऐसी सोसाइटी शुरू शुरू में बड़े मजेदार लगता है, क्योंकि कुछ भी करने को आजादी होती है, पर 200, 400, 500 साल के बाद पूरी की पूरी जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, धरती का ग्रह है, वो बर्बादी के कगार पर आ जाता है। क्योंकि तब हम सिर्फ बंदरों के अलावा और कुछ भी हमारे पास क्वालिटी नहीं बची होती है। मतलब हम किसी के साथ कोई भी व्यवहार कर सकते हैं, कैसा भी खा सकते हैं, कैसे भी जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसका परिणाम हम देखते हैं, आपको पता है जो जो मॉडर्न साइंस है वो मुश्किल से 16th century में, मतलब 16वीं शताब्दी में वो फूलने लगा, बढ़ने लगा। और आज हम 21वीं शताब्दी में है, सिर्फ 450-500 साल का ये जो मॉडर्न साइंस या टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हुआ, और उसके साथ साथ एक फ्री सोसाइटी आया, उसका परिणाम क्या हुआ? ये जो धरती है, प्लैनेट है, वो लाखों सालों की है, मिलियंस ईयर्स की है, और आगे भी लाखों साल तक रहने वाली थी। पर सिर्फ 500 साल की इंसानी जो जो ज्ञान है, जो आर्टिफिशियल नॉलेज है, और उसको उस टेक्नोलॉजी के साथ जो हमने फ्री सोसाइटी बनाया, उसका जो रिजल्ट हुआ कि धरती अगले 500 साल तक रहने लायक होगी नहीं होगी, ये सभी समझदार लोगों के लिए टेंशन का सब्जेक्ट है। कि आपकी और हमारी जो तीसरी या चौथी पीढ़ी आएगी, उसके लिए पेट्रोल भी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डाउटफुल है। और ये धरती में कितनी जो जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सिर्फ जो हमारा फ्री थॉट से कि हमें कुछ नहीं डिस्क्रिमिनेट करना, हम कुछ भी भोग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। तो बुद्धि को नियंत्रित करना, तेज करना बड़ी जरूरी है। और बुद्धि बढ़ेगी जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा। जितने हम अधिक से अधिक चीजों को जानेंगे, उतनी हमारी डिस्क्रिमिनेटिव, हमारी जो भेद करने की क्षमता बढ़ेगी। आप देखिए, दुनिया में ज्यादातर जो जो अंधविश्वास है, जो सुपरस्टिशियसनेस है, वो रिलीजियन से जुड़ा हुआ होता है। वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो, कुछ भी हो, साइंस में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पर धर्म, जो लोग जब धर्म से जुड़ते हैं, वो धर्म के बारे में बिल्कुल अंधा होते हैं, बहुत कम नॉलेज होता है। और उसका परिणाम होता है, दुष्परिणाम होता है कि धर्म में अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ता है, ब्लाइंड फेथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं पता। जैसे आजकल आप देखेंगे भारत से लेकर के यूरोप अफ्रीका तक हजारों तरह के योग आ चुके हैं। अभी भी एक अनाउंस हो रहा था एक योग के बारे में, प्रतिप्रसव योग। हजारों तरह के योगी आ चुके हैं अलग अलग नाम दे करके। करोड़ों लोग बिलियंस ऑफ डॉलर, यूरो या रुपया जो भी दे करके भक्त बनते हैं। अंदर से उतने ही फ्रस्ट्रेटेड, उतने ही डिप्रेस्ड, उतने ही बेईमान, उतने ही है जो एक किसी योग शिविर में नहीं जाता। क्योंकि आम लोगों को योग क्या है कुछ नहीं पता, ना पढ़ते हैं, ना पढ़ने की समझने की सोचते हैं, सिर्फ गुरुओं के भरोसे पूरी गाड़ी बहा देते हैं। इसीलिए दुनिया में ये जो रिलीजियन हो, ज्योतिष हो, योगा हो, उन पर बहुत सारे लोग आजकल करोड़पति बन चुके हैं और उनके भक्त अंदर से बड़ा बड़ा सड़े गले हो चुके हैं। इसीलिए ये जो बुद्धि को ठीक यूज करना, इसके लिए जरूरी है कि हमारा ज्ञान कितना है, हम किन चीजों को जानते हैं किसी भी विषय में। वो आप कोई खेल खेलने जाते हैं, उस खेल के रूल्स या रेगुलेशंस हो, या आप किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, उसका रेट, उसकी प्राइस क्या है हो, किसी भी मामले में जितना हमारा ज्ञान अच्छा होगा, अधिक होगा, उतना हम हमारे इंटेलेक्ट को अच्छा यूज कर पाएंगे, उतने हम संसार में अच्छे ढंग से जी सकते हैं। इसीलिए कहा कि सफाई के तीन, शरीर और कपड़ों को साफ करने के लिए पानी से साफ करना, मन को सफाई करने के लिए सच्चाई से मन को साफ करना, सत्य बोल करके अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को साफ करने के लिए विद्या, लर्निंग प्रोसेस, और जो तप है, कष्ट सहने की आदत, इनसे अपने शरीर को, अपने आप को आप ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, साफ बना सकते हैं, और अपनी बुद्धि को साफ बना सकते हैं अधिक से अधिक ज्ञान से। तो ये मनुस्मृति का श्लोक है। अगला है, नेक्स्ट कम्स प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ऑन दिस पॉइंट देयर इज एन अथॉरिटी। अब आता है प्राणायाम, इसके बाद चलिए। हाँ, क्योंकि जो हम संध्या करते हैं उसमें तीन चार चीजें होती है। एक तो आप अपने आप को प्यूरिफाइड करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे जो आचमन, अंग स्पर्श आप करते हैं वो क्या चीज है, स्वामी जी इस पर डिटेल में बताते हैं प्राणायाम क्या चीज है। तो स्वामी जी उसके लिए एक कोटेशन देते हैं अथॉरिटी, योग दर्शन का दूसरे चैप्टर का 28वां सूत्र है। प्राणायामाद अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तेरा विवेक क्षते। मतलब प्राणायाम क्यों करना चाहिए, योग दर्शन का सूत्र है कि प्राणायाम करने से प्रतिक्षण, हर मिनट धीरे 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 आपकी अशुद्धियां नष्ट होता है और ज्ञान प्रकाश होता जाता है। और ये तब तक चलता है जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलती है, जब तक आपको लिबरेशन नहीं होता, तब तक आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। ये प्राणायाम का फायदा है जो योग दर्शन के कराता है। इसके लिए स्वामी जी और एक कोटेशन देते मनुस्मृति का, अगला स्लाइड। दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। ये मनुस्मृति का श्लोक है। वो प्राणायाम का महत्व बताते हैं। बोले जैसे आप धातुओं को, जो मेटल्स होते हैं उनको, जो गोल्ड सिल्वर या लोहा जो भी है, इनको आप प्योर करने के लिए क्या करते हैं, आग में डालते हैं। जितने आग में आप उसको ज्यादा से ज्यादा तपाते हैं उतने ज्यादा वो शुद्ध होकर के आता है। इसी तरह जितने अधिक से अधिक हम प्राणायाम करते हैं, प्राणों का नियंत्रण करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उतने जल्दी हमारे मन और इंद्रियों की जो जो दोष है, जो बैड क्वालिटीज है, वो दूर होता है और हमारे अंदर उतने ज्यादा निर्मल और प्यूरिटी आती जाती है। तो प्राणायाम का ये फायदा है। तो प्राणायाम करे, प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राण जमा आयाम, प्राण कहते हैं जो आपकी सांस से, जो सांस है वाइटल एयर, उसको रेगुलेट करना, उसको इतना लंबा खींचना, इतना लंबा खींचना कि मान लीजिए जरूरत पड़ने पर आप 2 घंटे में एक ही बार सांस ले तो भी वो 2 घंटे तक वो फैला रहे। कभी कभी योगी लोग जब ध्यान में डूब जाते हैं तो वो दिनों बीत जाता है, और उतने देर तक अपने सांस को एक सांस लेकर बनाए रखना, यह प्राण का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रीदिंग एयर। जब आप शुरू शुरू में प्राणायाम करते हैं तो आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी थोड़ी में हम थक जाते हैं, जब सांस को रोकते हैं तो हमें बेचैनी सी फील होती है। अगर आप धीरे 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 रेगुलर करते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ धीरे धीरे करते, रोज करते हैं, कंटिन्यूअसली रेगुलर करते हैं, तो आप खुद अनुभव करेंगे कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आप 10-10 मिनट तक सांस ना लेकर भी रह सकते हैं। देखिए प्राणायाम से, इन चीजों से आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या होता है उसको छोड़ दीजिए, रियल लाइफ में आपको कितना फायदा होता है। कि प्राणायाम, अगर आप प्राणायाम की रियल प्रैक्टिस करते हैं, अपने सांसों को रोकने की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप घंटों अपने सांसों को रोक सकते हैं। तो आप स्विमिंग करें, आकाश में उड़े, अंधेरे कमरे में पड़े रहे, कहीं भी पड़े रहे, तो आप कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं? तो प्राणायाम क्या चीज है? तो स्वामी जी योग दर्शन का एक सूत्र बताते हैं, अगला स्लाइड 8वां। प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य, जैसे जब हम उल्टी करते हैं तो हमारे अंदर का जो कुछ, जो वॉमिटिंग करते हैं, अंदर का जो कुछ वो बाहर आ जाता है। प्राणायाम में जो जिसको हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं, अंदर के सांस को इसी तरह जैसे उल्टी की तरह बाहर निकालते हैं और बाहर रुकने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है, पर ये प्राणायाम का अंतिम स्थिति है। तो कहा जस्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉमिटिंग थ्रोज आउट फूड एंड वाटर, सिमिलरली द ब्रीथ शुड बी फोर्सिबली थ्रोन आउट एंड चेक देयर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। व्हेन इट इज इंटेंडेड टू थ्रो आउट द ब्रेथ, द पेल्विस शुड बी केप्ट पुल्ड अपवर्ड सो लॉन्ग विल द ब्रेथ रिमेन आउट। ये एक प्राणायाम है जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। प्राणायाम के साथ साथ जो जब हम सांस को रोकते हैं या कम करते, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ शनिवार को, रविवार को योग और प्राणायाम की क्लासेस चलती है, फ्री है, आप लोग जरूर आइए। कोई आपको अगर कोई आध्यात्मिक इच्छा नहीं है तो भी शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए बड़ी 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 जरूरी है। और आप प्योर प्राणायाम की बात, जो आसनों की जो प्योरिटी है, आप उसको समझ पाएंगे। हमारे यहाँ जो योग सिखाने वाले, वो आपको दावा नहीं करेंगे कि इसके द्वारा आपको वो मुक्ति तक पहुंचा देंगे। वो आपको ये भी दावा नहीं करेंगे कि आपकी बिजनेस इससे बन जाएगा। वो हमारे यहाँ योग शिक्षक जो आपको योग सिखाते हैं, वो ये भी आपको दावा नहीं करेंगे कि इस योग से आपकी बिगड़ी हुई शादी ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, ना आपसे डॉलर चार्ज करेंगे। क्योंकि योग का ये सब उद्देश्य नहीं है जैसे आजकल योगी लोग आपको आपको बताते हैं। योग का ये उद्देश्य था शरीर को, मन को, बुद्धि को, प्राण को, चारों को रेगुलेट करना, उनको स्वस्थ रखना। इसमें कोई बड़े बड़ी दावाएं नहीं है, पर आजकल इंसान बीमार है, वो बीमारी के लिए एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, वो किसी बाबा को ढूंढता है, कोई झाड़ फूंक के ठीक कर दे। आप कहेंगे अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो ऐसा बोलते हैं उनसे बेवकूफ कोई नहीं। ये जो हीलिंग चलता है क्रिश्चियनिटी में वो क्या है, ये जो पैस्टर्स हीलिंग करते हैं, ये टीवी में आप देखते हैं, वो भी यही है। जब आदमी अपने ज्ञान को मार दे, अपनी बुद्धि को ताला लगा दे, तो ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल हीलिंग शुरू होते हैं। तो क्या है प्राणायाम का? तो प्राणायाम का अर्थ होता है सांसों को अंदर बाहर के वायु को अंदर लेकर के देर तक रोकना, और अंदर के वायु को बाहर लेकर के देर तक रोकना। जितने देर तक प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने इतने धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे। हमारे शास्त्रों में चार तरह के प्राणायाम की बात की गई है, पर आपको जो अलग अलग तरह के सैकड़ों तरह के प्राणायाम मिलते हैं वो उसके अलग अलग वेरिएशंस हैं। जैसे जो संगीत होता है उसमें सात मूल राग होते हैं, वो आप किसी फोक सॉन्ग गाएं या जैज या रॉक या पॉप गाएं या इंडियन क्लासिकल गाएं, आप कोई भी गाना गाएं बा कोई भी म्यूजिक बजाएं, उसमें टोटल सात ही राग होते हैं। उस सात राग का अलग अलग वेरिएशन से अलग अलग तरह के धुन निकलता है, अलग अलग साउंड होता है। इसी तरह जो कलर होते हैं, हमारे यहां सात मूल रंग मानते हैं, और आज तो आप देखेंगे करोड़ों करोड़ों तरह के रंग है, थोड़ा इससे इसे मिक्सचर कर देते हैं। इसी तरह जो मूलतः पतंजलि ने चार प्राणायाम की बताया, उसके बाद जो हठयोग प्रक्रियाएं शुरू हुई उसमें उस प्राणायाम को ज्यादा लिक्विडिफाई किया, ज्यादा उसको फ्लेक्सिबल बना के अलग अलग तरीके से सैकड़ों तरह के प्राणायाम हमारे सामने हैं। उद्देश्य यही है कि सांसों की गति को रेगुलेट करना। और ये जो हठयोग में अलग अलग तरह के प्राणायाम आपको मिलते हैं वो बेशिस खास करके आपके सांसों को, आपके नर्व सिस्टम को, आपके जो जो बॉडी सिस्टम है, जो अंदर के हर तरह के जो बॉडी में जितने तरह के सिस्टम्स काम करते हैं उन सिस्टम को खास तरह के उनको प्रेशराइज्ड करना, उनको खास तरह के दबाव डाल के उनको अपने नॉर्मल सिस्टम पर लाना, ये अलग अलग प्राणायाम का काम है। वो अनुलोम विलोम है, वो कपाल भांति है, वो भ्रामरी, सैकड़ों तरह के जो प्राणायाम होते हैं वो, पर उनकी बेसिक वो चार है। या तो सांस को अंदर रोकें या बाहर रोकें, या जहां पर है वहीं रोकें, या उसको अगर वो अंदर जा रहा है तो उसको बाहर निकाल के रोकें, या बाहर जा रहा है तो अंदर रोकें। ये चार तरह की प्रक्रिया है, तो थोड़ी थोड़ी इस पर हम चर्चा करेंगे। अगला है 9, दिस इज द वे हाउ टू कीप द ब्रेथ आउट लॉन्ग। When there is a feeling of uneasiness, then the breath should be slowly drawn in. प्राणायाम का पहला दस्तूर होता है, प्राणायाम क्या योग में आसन करें, प्राणायाम करें, कुछ भी करें, पहला नियम होता है कभी भी कोई चीज फोर्सफुली आप नहीं करेंगे। शरीर में भी जब आसन हम करते हैं एक्सरसाइज, जहां तक आपको जब जो इंस्ट्रक्टर आपको सिखाते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपका हाथ अगर यहीं तक जाता है That's enough. उतना ही आपको अभिष्ट था, उतना ही उद्देश्य था। किसी का यहां तक जाता है तो किसी का यहां तक जाता है, जहां तक आपकी बॉडी आपको अलाउ करता है वहीं तक लेना ही ठीक है। सांसों में भी जहां तक आप रोक सकते हैं, जहां तक कर सकते हैं उतना ठीक है। रोज रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका आपकी बॉडी में, आपके प्राण में फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी। दूसरों को देखकर अचानक बिल्कुल बड़ा छलांग लगाने से बड़ा नुकसान होता है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है योग जब भी आप आसन प्राणायाम करें जरूर ट्रेनिंग लेकर के करें, किसी अच्छे प्रशिक्षक से, अच्छे जानकार से जानकारी लेकर के जरूर करें। क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ी सी जोश में आ गए, योग में जोश नहीं चाहिए, बिल्कुल कामनेस और क्वाइटनेस चाहिए, नहीं चाहिए। जितन अगर आप जरूरत से ज्यादा जोश दिखाया, पता नहीं कहां आपके गर्दन में अकड़ आ गए, पैर में अकड़ आ गए, कुछ हो गया, फिर रोते फिरेंगे। तो इसीलिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के हमें योग और प्राणायाम करना चाहिए। और जहां तक आपको बेचैन हो प्राणायाम करते समय, जैसे ही आपको अनइजीनेस फील हो तो छोड़ देना चाहिए। अगला है, एवो प्रोसेस शुड बी रिपीटेड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी एंड डिजायर। दिस शुड बी अकम्पाइंड बाय द रिसाइटेशन ऑफ द सैक्रेड सिलेबल ओम इन द माइंड। दिस कंड्यूसेस टू द प्यूरिफिकेशन एंड फॉर्मनेस ऑफ द सोल इन द माइंड। पढ़ा कि प्राणायाम से हमारी आत्मा शरीर की शुद्धता होती है और हमारे अंदर दृढ़ता आती है। कोई भी हम कार्य करें, ओम का जप मन में चलता रहना चाहिए, वो भी मन में, कोई आवाज करके नहीं, मन में गुनगुनाते रहना चाहिए। तो जब भी हम प्राणायाम या ध्यान करें तो मन में वो जो ओम का उच्चारण चलता रहना चाहिए। आप पूछेंगे ओम ही क्यों, हमने ओम के बारे में काफी चर्चाएं यहाँ की है, कितने सारे 5-6 रविवार हमने ओम को समझाने के लिए कोशिश किया था। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, हमारे परंपरा में ईश्वर को व भगवान से जोड़ने के लिए जो एक सिंगल नाम है, जो एक एक पर्टिकुलर नाम लिया गया, वो ओम था। बाकी जितने तरह के हम नाम लेते हैं वो उनके गुण कर्म स्वभावों के अनुसार, जैसे हमने पहले भी चर्चा की, आपका अपना एक नाम है जो आपके सर्टिफिकेट में है, पर वैसे आप उस नाम से बुलाए नहीं जाते हैं। और भारत में तो खास करके बहुत सारे राज्यों में ऐसे है कि एक सर्टिफाइड नाम होता है और निक नेम्स बहुत सारे होते हैं, वो निक नेम के अलावा भी बहुत सारे नाम हमारे पड़ते हैं। बहुत सारे लोग आपको नाम से नहीं बुलाते हैं। आप अगर ऑफिस में किसी पोस्ट पर है तो लोग आपको उस पोस्ट के नाम से बुलाते हैं। आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर करके बुलाते हैं। आप अगर प्रोफेसर है तो आपको प्रोफेसर करके बुलाते हैं। आप अगर घर में अपने बच्चों के साथ हैं तो बच्चे आपको पापा या मामा जो भी करके बुलाते हैं। पर आपके जो पेरेंट, जो आपके माँ बाप हैं, वो आपको किसी नीक नाम से बुलाते हैं। आपके छोटे भाई व बहन आपको बड़े भैया, भाई, दादा जो भी करके बुलाते हैं। तो आपके दोस्त आपको किसी दूसरे ढंग से बुलाते हैं, आपके दुश्मन आपको और ढंग से बुलाते हैं। तो व्यक्तित्व में एक हूं, पर क्योंकि मेरे जितने, आपके जितने ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज होंगे आपके उतने ज्यादा से ज्यादा नाम पड़ते जाएंगे। आप अगर अच्छा गाना गाते हैं तो बहुत सारे जगह जहां आपने स्टेज पर गाया है तो लोग आपको एक सिंगर के रूप में जानेंगे। अगर आप हमेशा गाते हैं स्टेज पर कहीं पर, जो गाना गाता है पता चला वो तो किसी ऑफिस में इंजीनियर भी है, वो जो गाना सुनने वाले उनको तो नहीं पता, उनको लगता है ये एक सिंगर है। पर जो अच्छे इंजीनियर है तो उनको लोग कहते हैं बड़ा अच्छा इंजीनियर है। तो एक व्यक्ति अपने अलग अलग कार्यों के कारण उसके अलग अलग नाम पड़ते हैं। इसीलिए परमात्मा के हजारों करोड़ों नाम अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग एक भाषा में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं और होते हैं। हमारे यहाँ अगर हम ईश्वर को विष्णु कहते हैं क्योंकि विष्णु का अर्थ होता है जो सब जगह फैला हुआ है, वो ब्रह्मा जो सबसे बढ़ा हुआ है, गणेश क्योंकि जो सबका लीडर ऑफ मास, जो ग्रुप का, जो मास का जो लीडर है, उसको शिव कहते हैं क्योंकि वो मंगलमय है, वो शंकर है क्योंकि सम करने वाला, वो सबका सुख करने वाला है, वो वरुण है क्योंकि सबको ढकता है। तो आप जो कुछ नाम हम उसका दे रहे हैं वो उसके अलग अलग गुण स्वभाव कर्मों को डिफाइन करता है। पर एक ऐसा नाम है जिसे, जैसे हमने पहले भी बताया, हमारा नाम के साथ एक्चुअली हमारा बहुत कम रिलेशन है। वो तो माँ बाप को जो अच्छा लगता है नाम दे देते हैं, उसके हमारे गुण कर्म स्वभाव से कोई लेन देन नहीं है। कोई नाम सूर्य हो जाने से कोई सूर्य नहीं होता है, कभी कभी सूर्य नाम वाले तो बड़े फीके होते हैं। पर ईश्वर का जो नाम हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है वो उसकी पूरे कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, उसके हर गुणों को, हर कर्मों को, हर स्वभाव को रिफ्लेक्ट करता है, वो एक ही नाम ईश्वर के हर तरह के गुण कर्म स्वभाव को डिफाइन करता है, इसीलिए ओम का महत्व है। तो जब हम प्राणायाम करें तो उस ओम को अंदर जपते रहें और प्राणायाम करते रहें। तो ये प्राणायाम बेसिकली चार तरह की है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करके समाप्त करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर वन इज एक्सटर्नल, जिसको हम कहते हैं बाह्य प्राणायाम, इज टू चेक द ब्रीथ आउटसाइड, सांस को अंदर लेके सामान्य गति से या तेज गति से डीप से, और उसको छोड़ देना पूरी तरह, सांस को बाहर निकाल के बाहर रोके रखना जब तक आपको अनइजीनेस ना हो, उसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम का मूल प्राणायाम का एक तरीका है, इसके बेस पर आप सैकड़ों तरह के वेरिएशन बना सकते हैं। द नंबर टू इज स्टॉपिंग द ब्रीथ इनसाइड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। दूसरी तरीका प्राणायाम के है कि आप सांस अंदर ले ले और लेकर जितना ले सकते हैं अंदर भरें और अंदर ही रोकने की कोशिश करें जब तक आपको अच्छा लगे, जब तक आपको अनइजीनेस फील ना हो, फिर आप छोड़ दीजिए। ये सेकेंड टाइप ऑफ प्राणायाम है, इसके अपने अपने वेरिएशन हो सकते हैं। नंबर थ्री इज इमीडिएट चेकिंग, स्टॉपिंग द ब्रेथ ऑल एट वंस एट व्हाटएवर प्लेस वन डिजायर्स। तीसरे कोटि का प्राणायाम है कि आपकी सांस जहां पर है, आपने जब चाहा कि मुझे सांस रोकनी है तो वही रोकिए, अगर जा रहा है तो अंदर, जा रहा है तो अंदर रोकिए, बाहर आ रहा है तो वही रोकिए, जहां पर है वही रोक देना, उसको कहते हैं स्तंभ वृत्ति। तो जहां पर सांस है उसको वहीं रोकना, और तब तक जब तक आपको अनइजीनेस फील ना हो, आपको खराब ना लग रहा हो, इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए। चौथा पर सबसे मुश्किल है, जो बहुत योगों के अभ्यास करते हैं उस स्टेज पर वो आते हैं, वो है नंबर फोर इज आउट इन थ्रोइंग और ड्रॉइंग द ब्रीथ फोर्सिबली इनसाइड व्हेन इट हैज ए टेंडेंसी टू गो आउट and throwing it forcibly outside when it has a tendency to go in। ये सबसे मुश्किल काम है, इसको बाह्याभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। सांसों को तब बाहर निकालने की कोशिश करना जब सांसों की टेंडेंसी अंदर जाने की हो, या सांसों को अंदर लाने की कोशिश करना जब सांस बाहर जा रहे हो। जो योगी लोग जो प्राणायाम का बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं अच्छी खास ट्रेनिंग लेकर के, वो एक लेवल पर जब उनको प्राणायाम पर काफी हद तक उनके कंट्रोल होता है, वो जो फोर्थ लेवल का प्राणायाम उनके लिए ये एक तरह की काउंटर मोशन है कि सांस की जो नेचुरल मूवमेंट है उसके अपोजिट सांसों को लेने की प्रैक्टिस करना। बाय दिस काउंटर एक्टिंग द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बोथ द मोमेंट्स आर केप्ट इन चेक and control of breath leads to the subjugation of the mind and the senses। ये जो last प्राणायाम है ये बहुत मुश्किल है, पर अगर ये किसी को सिद्ध होता है, अच्छा कर पाता है, तो उसको बड़े फायदे होते हैं कि उसका मन और इंद्रियां, उनको रोकना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लाना बड़ा आसान हो जाता है। समय हो चुका है, आगे की बातें हम आगे करेंगे। स्वामी जी इस चैप्टर में इसी तरह नई नई चीजें आपको बताते जाएंगे।